श्रीमद् भागवतम क्लास में सब का स्वागत है। और हम लोग जो हैं श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के छठे अध्याय के 14वें श्लोक पर आज चर्चा करेंगे। आप सबको हमारे पीछे बोलिए, कुटुंब ओषाय वियता निजायु ना उद्धयते अर्थं विहितं प्रमत्त सर्वत्र तापत्रये दुःखिता आत्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बराम्। कुटुम्ब पोषाय वयनीय चायुरा नाबुद्धयते अर्थं विहितं प्रमत्ता सर्वत्र तापत्रय दुविखात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्ब राम। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की ध्यान पूर्वक सुनिए। अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है उद्देश्य अनजाने ही विनष्ट हुआ जा रहा है। फिर भी वह इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी दमड़ी ना खो जाए। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वह संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। श्रीलभुबाजी तात्पर्य में लिखते हैं, मूर्ख व्यक्ति ना तो यह समझ पाता है कि वह कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, ना ही यह समझ पाता है कि वह किस तरह अपने परिवार वालों के भरण पोषण में ही अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ बिता रहा है। वह अपनी हानि के एक छदान को की भी गणना करने में पटु होता है, लेकिन वह इतना मूर्ख होता है कि यह नहीं जानता कि वह भौतिक गणना के अनुसार कितना धन खो रहा है। चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं कि जीवन का एक क्षण लाखों रुपए से भी नहीं खरीदा जा सकता, किंतु मूर्ख व्यक्ति ऐसे मूल्यवान जीवन को बिना यह जाने ही बिताता रहता है कि आर्थिक गणना के अनुसार कितना जीवन व्यर्थ चला गया। यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति लागत की गणना करने और व्यापार करने में पटु होता है, किंतु उसे उसकी अनुभूति नहीं हो पाती कि ज्ञान के अभाव में वह अपने मूल्यवान जीवन का दुरुपयोग होने दे रहा है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि तीनों प्रकार के कष्टों को सहता रहता है, किंतु वह इतना बुद्धिमान नहीं होता कि भौतिकतावादी जीवन शैली को रोक पाए। हरे कृष्णा। तो प्रसंग है प्रहलाद महाराज और उनके पिता के बाद, अब इस अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश देना। बताते हैं कि तीन प्रकार के, प्रभुपाद जी बताते हैं कि समाज में लोग होते हैं। एक वो लोग जो लोगों को कुछ बताया जाए तो उसको वो ऐसा मान लेते हैं। दूसरे वो लोग जिनको बताया जाता है सही क्या गलत है, लेकिन वो कर कर देखते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि ये गलत है सही है। और तीसरे वो जिन लोगों को बार बार समझाया जाए फिर गलती करते हैं, फिर उसको दंड मिलता है, फिर गलती करते हैं, फिर दंड मिलता है। तो इन तीन श्रेणी के लोगों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जिसको एक बार बता दिया कि सही क्या है और उसके बाद वो अपना जीवन उसी तरह जीता है। प्रहलाद महाराज जब माता के गर्भ में थे तो माता कयाधु को नारद मुनि जी ने प्रवचन किया, वो सुना उन्होंने। और उस ज्ञान को सुनने के बाद माता के गर्भ में ही पूरा ज्ञान हुआ, और जब माता के गर्भ से बाहर भी आए तो भी साधुवत रहते थे, और यहां तक कि पिता ने उसको असुरों के स्कूलों में भेजा कि सारी नीतियां समझ ले। लेकिन उसके बावजूद भी एक शुद्ध भक्त का संग, उनके द्वारा कथा सुनने का प्रभाव यह था कि प्रहलाद महाराज सदैव एक बार समझ गए जीवन का लक्ष्य क्या है। अब ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज ये जो जीवन के विषय में लिख रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर देता है, कि प्रहलाद महाराज ने बहुत बड़ा जीवन था, कुछ पत्नियां रहे, बच्चे रहे, जॉब पे जाना पड़ता था, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे, और उसके बाद जब जीवन से दुखी हुए, परेशान हुए, उसके बाद कुछ रियलाइजेशन आई कि संसार में सब बेकार है। ऐसा नहीं है। उम्र है 5 वर्ष, अभी कोई दुनिया नहीं देखी उस तरह की, है ना। 5 वर्ष की आयु में उस ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया और स्कूल में अपने सहपाठियों को भी वही ज्ञान दे रहे हैं। तो इस प्रसंग से एक तो ये समझ आता है कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त के मुखारविंद से भगवान की वाणी को सुनता है या जीवन का लक्ष्य समझता है तो बहुत अधिक प्रभाव करता है। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत में जब चलते हैं तो उनके चरणों के आसपास या जो वहां की डस्ट है वो उसका कलर सैफरन कलर है, पार्टिकल्स है। तो जब भगवान चलते हैं तो वो पार्टिकल्स उड़ते हैं और बताते हैं उनमें से कुछ पार्टिकल्स इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, और जब भगवान के शुद्ध भक्त कथा करते हैं तो वो सैफरन पार्टिकल्स उनके मुखों से कथा के रूप में निकलते हैं, और हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो लोग पूरी तरह से अपनी बद्धता के कारण इस विषयी जीवन में संघर्षरत हैं, ऐसे लोगों के हृदय में जब कथा प्रवेश करती है तो वो कथा उन भक्तों के हृदय में प्रवेश करकर उनको शुद्ध कर देती है। तो जब प्रहलाद महाराज ने सारी कथा सुनी उसके बाद उसको अपने जीवन में भी उतारा और अब प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों को भी समझा रहे हैं और अपने सहपाठियों को, सहपाठी का मतलब हुआ कि वो भी उतने ही बच्चे होंगे, कितने 5 साल के या 6 साल के रहे होंगे, थोड़े बड़े रहे होंगे ना। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। जब इस प्रकार की बात आती है कि मनुष्य इस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा है, प्रहलाद महाराज का यह संदेश सुनते ही कई बार माताओं को इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, है कि नहीं? यह कई बार बोल रहे थे कि पशु की तरह जो है जीवन व्यक्ति अपना आहार निद्रा भय मिथुन में लगा रहा है, उसको पता नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो घर के जो और लोग हैं, बच्चे, पत्नी, उनको सबको लगता है कि अगर इस टीचिंग के अकॉर्डिंगली हमारे पिताजी चलने लग गए तो क्या होगा? संकट आ जाएगा। मुझे कल आधा घंटा लग गया एक लगभग 25-30 साल के लड़के को यह समझाने में कि आपके पिताजी को मायापुर धाम जाना चाहिए। वो जाना चाहते थे, टिकट भी कराई थी, लेकिन बेटे को ये लग रहा था कहीं ये समझ पाए देख पा मुझे आधा घंटा लगा उनको समझाने में, पिक्चर दिखाई सबको समझाया कि वो बहुत सुंदर धाम है, विश्व से लोग आ रहे हैं और आपके पिताजी नहीं कहते कल को ऐसा ना हो चुके कुछ ऐसा हो जाए मैं कैसा हो जाए। तो डर तो उनको ये था कि भाई पिताजी हमारे चले ना जाए। मैंने कहा नहीं आपके पिताजी तो मंदिर वैसे ही नहीं आते, और अगर किसी के हृदय में कुछ वैराग्य उत्पन्न करना भी हो तो नियमित रूप से कक्षाओं में बैठना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, विधिवत सब चीजों का पालन करना पड़ेगा, तब जाके कुछ समय बाद कुछ वैराग्य आएगा। और वैराग्य अगर आ भी गया तो मंदिर में तो जगह ही नहीं है ना, है ना। हमने बताया भाई मंदिर में तो विवाह के बाद लोगों को यहाँ नहीं रखा जाता, और अगर किसी को बहुत ज्यादा वैराग्य आता भी है तो हम उसको कहते हैं कुछ सेवा कर लीजिए मंदिर में एक आधे घंटे की, है ना, बाकी अपने परिवार में रहकर ही घर को वृंदावन बनाइए। इतने सारे एश्योरेंस देने पड़े, और होता भी ऐसी है ना, तब जाके मतलब कच्चा पक्के था, अब पता नहीं क्या होगा देखते हैं। बट कहने का मतलब क्या है कि जब ऐसी बातें सुनते कि अत्यधिक आसक्त मनुष्य, अब मनुष्य का मतलब क्या है, खाली पुरुष के लिए बात नहीं हो रही, इसमें स्त्रियां भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, है ना। मनुष्य का मतलब तो जिसको ये देह प्राप्त हुआ है, अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ कर रहा है, व्यतीत कर रहा है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति कामतुर होता है और उस काम की इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो विस्तार करता है, परिवार बढ़ाता है, और फिर उसी में आसक्त हो जाता है, उसी की जिम्मेवारी को पूरा करने में, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इस प्रकार अपने जीवन का सारा समय व्यर्थ गवा देता है। जैसे जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम उसको और अपना जीवन कहाँ लगा रहा है। कि अगर किसी व्यक्ति को पहले तो यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो उसके लिए सारी गाड़ियां जो हैं कोई मायने नहीं रखती, कौन सी कहाँ जा रही है, कौन सी कहाँ जा रही है, किसी में बैठ जाएगा। और अगर वो कुछ अपने गंतव्य पर जाना भी चाहता है, मान लीजिए उसने कुछ निर्धारित किया मैं कहीं जाना चाहता हूं, तो निर्धारित करने का मतलब ये नहीं कि घर में बैठ के वो गाड़ी वहां जाएगी। अगर मान लीजिए उसको ट्रेन पकड़ना है ना, तो ट्रेन घर पे तो नहीं आएगी, क्या करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो आ जाएगी। अगर दरवाजे पे खड़ा है तो आएगी क्या, स्टेशन पर जाना पड़ेगा, स्टेशन पे गया तो वहां पर ट्रेन ही नहीं है क्योंकि सारे खाकी वर्दी में घूम रहे, क्योंकि पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तो किसी ने बोला ये स्टेशन नहीं भैया दूसरे स्टेशन जाओ, तो फिर वो मेट्रो स्टेशन पहुंच गया और मेट्रो स्टेशन घूम रहे हैं, वो तो जा ही नहीं रही अपने गंतव्य पे जहां उसको जाना चेन्नई है कि नहीं। फिर वो उस स्टेशन से हटा तो सर्विस स्टेशन चला गया जहां गाड़ियां, तो उसको बताना पड़ेगा कौन सा स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, और फिर कौन से वाले स्टेशन जहां पे वो ट्रेन आती है। अब पता चले वो ऐसे स्टेशन पे पहुंच गया जहां ट्रेन भी है, टिकट की बुकिंग का दरवाजा भी है, ट्रेन भी आती है, लेकिन वो ट्रेन नहीं आती, तो कोई छोटे स्टेशन पहुंच गया वो शुक्र बस्ती के, तो वहां से तो नहीं जाएगी चेन्नई है कि नहीं। तो ये भी मालूम होना चाहिए कि किस स्टेशन से जाएगी, फिर वहां जाने के बाद अब उसको मालूम है कि टिकट लेना है, ठीक है कि नहीं। तो खिड़की पे खड़ा हो गया, दो घंटे बाद नंबर आया, तो व्यक्ति ने कहा भाई साहब छह नंबर में नहीं नौ नंबर में जाइए, है कि नहीं, यहां तो आगे की टिकट की रिजर्वेशन होती है, आपको तो आज जाना है ना, तो उस पर जाइए। तो मतलब दो घंटे खराब, तो नौ उसमें खड़ा हुआ फिर, और जब उसका नंबर आया तो लंच टाइम हो गया था, समझ पा रहे हैं। तो उसको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, और टिकट ले लिया अगर उसने नहीं नहीं वो भागा और ट्रेन में जाके बैठ गया। अब ट्रेन में बैठ गया क्या सारी ट्रेन वहां जाती है, तो वो तो पहुंच गया जम्मू, टिकट भी है, ट्रेन भी है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ा। और अगर ट्रेन में मिल गया, मतलब सही ट्रेन में बैठ गया, चलो टिकट भी है, सीट नंबर में बैठ गया, अभी क्या है, बड़ा परेशान है, दुखी है, क्यों? चाहे ऐसा बोलते हुए लोग आ रहे हैं, वो सोना चाहता लेकिन सोने नहीं दे रहे, कोई मांगने वाला आ रहा है, कभी खाने पीने की चीजें आ रही हैं, नीचे के लोग शोर बहुत मचा रहे हैं, तो गुस्सा आने पे वो क्या करेगा, उतर जाएगा, है ना। तो उतरने से स्टेशन वहां पहुंचेगा क्या, क्या करना पड़ेगा उसको, सहन करना पड़ेगा उसको, तब तक जब तक गंतव्य ना आ जाए। तो पहली बात तो वो बात ये हम बता रहे हैं कि अत्यधिक आसक्त व्यक्ति जो कि अपने ही इंद्रिय तृप्ति भोग विलास और जो उसने सब कुछ इकट्ठा किया उससे इतना आसक्त है कि पहले तो सोचता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और अगर उसके अंदर फील आ भी जाए कि ठीक है पता चल गया है कुछ है कि नहीं, और फिर तैयारी करे जाने के लिए, तो भी कितना मुश्किल है कि पहले तो उसको पता होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और फिर जो जीवन का लक्ष्य उसे प्राप्त कैसे करना है, कहां पर जाकर होगा, कौन से स्टेशन पे जाना पड़ेगा, तो घर से निकलना पड़ेगा। और इस प्रकार के जो प्रभुपाद जी ने 700 सेंटर बनाए हैं सर्विस स्टेशन, इन स्टेशन में आना पड़ेगा, भगवत कथा सुननी पड़ेगी, है ना, भक्तों का संग करना पड़ेगा, है ना, सारे वैष्णव सदाचार को सीखना पड़ेगा। और जो ट्रेन के अंदर टिकट में सबको लेकर बैठ गया है, तो अब भक्तों के बीच में रहने के बाद कई चीजों को क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। मुझे ये भक्त पसंद नहीं है, मैं इसके साथ क्यों बैठूं, ये भक्त तो ऐसा करता है, इसने मुझे ऐसे कहा था, ये सेवा मुझे करनी थी उनको मिल गई, 500 तरह की चीज। और इन सब डिस्टर्बेंसेस से व्यक्ति क्या करता है, उतर जाता है। कई बार उसको लगता है कि उतरना ही बढ़िया है, इससे बढ़िया तो मैं साइकिल ले लूं, साइकिल पर चला लूं, ठीक है ना, अब साइकिल पर जाएगा क्या चलने। तो कहने का क्या मतलब है, पहली बात तो जीवन का लक्ष्य नहीं पता, और जो लोग अत्यधिक आसक्त हैं बताते हैं कि जिस व्यक्ति की इस भौतिक जगत में बहुत ज्यादा आसक्ति है, क्योंकि हमारा जो है प्रहलाद महाराज का तो ट्रेनिंग बड़ा अच्छा हो गया, माता के गर्भ में सारी शिक्षा मिल गई, हमारे साथ तो क्या है कि जब आजकल के वातावरण के हिसाब से देखें, अभी जो माता गर्भवती होती है तो वो प्रवचन नहीं सुनती, ये शास्त्र का अध्ययन नहीं करती, वो क्या करती है, टेलीविजन, टीवी, मूवीज देखती है। तो वो जब जो देश कुछ देख रहा है, जो कुछ सुन रहा है, अब उनके लिए नारद मुनि वो टीवी है उस समय, है कि नहीं। तो जो वो बोल रहा है, जो कथा सुना रहा है, जो म्यूजिक चल रहा है, तो अंदर जो हमारा कलयुग की प्रहलाद है वो उस तरह डेवलप हो रहा है। और फिर जब बाहर आता है वो, तो आते ही गोदी में बैठते बाल खींचेगा, घुसा मारेगा, कुछ भी करेगा, जमीन पे लेट जाएगा, लोग कहते हैं प्रभु जी ये कैसे हो गया। तो क्योंकि ये संस्कार इत्यादि का पालन हमने नहीं किया, या आज नहीं किया जाता, और फिर ये अपेक्षा की जाती है कि घर में प्रहलाद जैसा भक्त हो, फिर ये भी नहीं की जाती, सॉरी गलती होगी, मतलब अच्छा बच्चा हो जो हमारे कहना माने, है ना। माता पिता हिरण्यकश्यपु जैसे, और बच्चा भी प्रहलाद जैसा, हिरण्यकश्यपु जैसा। तो जिन लोगों की आसक्ति परिवार इत्यादि में होती है और भोग विलास कर इस जीवन को जो करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए श्रीमद् भागवतम कई जगह इंगित करता है कि व्यक्ति की इस प्रकार की दिनचर्या से दिन ब दिन उसकी आयु घट रही है। आयु हरति वे पुंसाम उद्यन अस्तन चाहिए नसो, रोज सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से हमारा समय बीत रहा है, लेकिन ये इतना धीरे होता है कि हमें फील नहीं होता। यहां तक कि वर्षा के समय कई कीट पतंगे आ जाते हैं, अचानक पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, विवाह करते हैं, संतान करते हैं, और सुबह तक तो वही 100 साल होंगे, बट उन्हें बिल्कुल फील नहीं होता कि हम जल्दी मरने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए वो जो 8-10 घंटे हैं 100 वर्ष के बराबर है, और हमारे लिए जो हमें 100 वर्ष दिए गए हैं उसमें से भी अब 30-40% कम कर लीजिए, तो जितना भी समय हमारे पास है उस समय को भी हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, खाओ पियो, अभी ऐश करो, और जीवन भर उस माध्यम को जिसकी वजह से इंद्रिय तृप्ति की जाती है, क्या माध्यम है वो? धन, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपनी सारी इंद्रिय तृप्ति को अंजाम देते हैं, तो उसको एकत्रित करने के लिए वो नाना प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं, उसी में लगा रहता है, और क्या होता है कि एक बैलेंस शीट भी बनाता है उसकी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि कहां पर मैंने जो है प्रॉफिट किया, कहां पर मुझे लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो क्यों हुआ, आगे लॉस ना हो तो क्या करूं, इस प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो दिन ब दिन उसका समय बीत रहा है, चाणक्य पंडित जी कह रहे हैं कि एक क्षण भी अपनी सारी दौलत देकर भी हम लोग दोबारा वापस नहीं खरीद सकते, तो इतना कीमती समय हमारा जो बीत रहा है, अगर हम लोग अपने एक दिन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं तो पता चलता है कि कितना बड़ा लॉस हो गया हम लोग को। प्रॉफिट अगर हम लोग देखें, प्रॉफिट के एरिया में वो आएगा, वो समय आएगा जो समय आपने भगवान के नामों का जप किया, भगवान के लिए भोग लेने के लिए गए, भोग बनाया, भगवान को ऑफर किया, वो समय जो मंदिर आए, मंदिर से गए, मंदिर में दर्शन किया, वो समय जो कथा में बैठे कथा सुनी, वो समय जो आपने अध्ययन किया, वो समय जो डीटी वर्शिप किया, ये सारा प्रॉफिट है। और लॉस क्या है? वो समय जितना देर टेलीविजन देखा, वो समय जो आप मोबाइल में लगे रहे, वो समय जिसमें आपने प्रजल्पा या भौतिक चर्चा की, वो समय जिस समय को आपने व्यर्थ किया, जो कि कृष्ण चर्चा में, कृष्ण भक्ति में नहीं लगा, जो फ्रूटफुल नहीं था, वो सारा समय लॉस है। तो अगर आप डेली बेसिस पर अपना हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, तो क्या लगता है, हम लॉस में हैं प्रॉफिट में? बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, कितना समय ऐसे ही निकल रहा है, और कई बार सुने मैच आ जाए तो जिनको मैच का चस्का है उनका तो सीधे 8-9 घंटे गए, कई बार हमने देखा कि लोग 2-3 घंटे न्यूज़पेपर में पढ़ना नहीं बोलना चाहिए तो चाटना बोलना चाहिए, क्योंकि जब कोई चम्मच में चटनी लग जाती है जो चाटना, तो वो पूरा चाटता है उसको, कहीं पर भी नहीं रहता। और कुछ लोग होते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ते नहीं है, क्या करते हैं ऊपर से लेकर, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, वो 2.5-3 रुपए वसूल करना चाहते हैं पूरे, डेट से लेकर टाइम से लेकर आखिर के एडवर्टीजमेंट तक पढ़ते हैं 2-3 घंटे, तो इस प्रकार समय बिताया जा रहा है। तो जिस प्रकार एक बिजनेसमैन अपनी बैलेंस शीट बनाता है या अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और देखता है मुझे कहां नुकसान हो रहा है, एक एक पैसे का अगर नुकसान हो जाए तो उसका दिल धड़कता है, उसी प्रकार एक भक्त को चाहिए कि वो अपने दिल की भी क्या बनाए, एक बैलेंस शीट बनाए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, और वो रोज इसको देखे कि मेरा कितना समय भगवान की भक्ति में लग रहा है, कितना समय मैं अध्ययन कर रहा हूं, कितना समय मैं कीर्तन कर रहा हूं, कितना समय मैं डीटी वर्शिप में हूं, कितना समय मैं भक्तों का संग कर कथा का श्रवण कर रहा हूं, इस प्रॉफिट को बढ़ाए। नहीं तो होगा क्या, श्रीमद् भागवतम में ही कपिल मुनि अपनी माता जी को, देहूति जी को बताते हैं, प्रवचन करते हैं, तो कि किस प्रकार, और कई जगहों पे पुरंजन की कथा इत्यादि में भी पता चलता है कि जब एक व्यक्ति अपने परिवार से, स्त्री से, बच्चों से बहुत ज्यादा आसक्त होता है, कुछ बस इंद्र तृप्ति के चक्कर में इतना ज्यादा विस्तार करता है और इस संसार में इस तरह फंस जाता है और बहुत ज्यादा स्त्री संगी का कामी होता है, तो मृत्यु के पश्चात उसको क्या मिलता है, स्त्री का शरीर मिल जाता है। और जो स्त्रियां हैं, स्त्री का शरीर लेकर आए, तो उन्हें क्या सोचना चाहिए कि अरे बाप रे बाप, शायद हम भी कभी पुरुष रहे होंगे लेकिन अब हमें स्त्री का शरीर मिला है, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी, सॉरी इनसिक्योर फील करता है इस शरीर में आत्मा, स्त्री शरीर में, उसे हमेशा एक शेल्टर की जरूरत पड़ती है। फिर सब कुछ जो है, बच्चे हैं, पिता हैं, भाई हैं, सब ये सारा उनको देखना अच्छा लगता है। तो कपिल मुनि कह रहे हैं कि स्त्री को ये सोचना चाहिए कि भैया कितने 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 जन्मों से मारे हैं, है कि नहीं। जैसे कई बार कई भागवतम के प्रसंगों में माया शब्द का इस्तेमाल किया गया है और कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी माया माया बोलते हैं, स्त्री को ही माया बताते हैं हम, है कि नहीं, हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला गया, कभी सुना है आपने, लोग प्रश्न करते। और क्योंकि इन दोनों शरीरों में ये दोनों एक इस प्रकार के यंत्र हैं, माध्यम हैं भगवान का प्राप्त करने के, और जिसमें दोनों की विकसित बुद्धि प्राप्त हुई है इस शरीरों में, तो माया वो चीज होती है जो भगवान की भक्ति से किसी दूसरी चीज को अलग करे, ठीक है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए माया, क्योंकि इन दोनों यंत्रों में जो पुरुष वाला यंत्र है, पुरुष देह जो है, इसमें ज्यादा कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज भगवान को प्राप्त करने की, तो इसलिए ज्यादातर इसी शरीर की बात की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्री यंत्र में या स्त्री देह में भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता, ऐसा नहीं। तो कपिल मुनि जी कह रहे हैं कि जो जिनको स्त्री देह प्राप्त हुआ है उन्हें ये सोचना चाहिए कि अब जो ये सब मेरे लोग आसपास हैं, अगर मैं इनकी चिंता में, इनके चिंतन में, इनकी देखभाल रखरखाव में और अपनी को सिक्योर करने में ज्यादा समय अगर मैं लगाती हूं, या तो ये फिर मेरे लिए भी बंधन का कारण है, इसका मतलब अगला जन्म फिर से। तो अपनी कर्तव्यों को पूरा करते हुए जिस प्रकार भगवान ने ज्ञान दिया और कहा कृष्ण ने अर्जुन को कि मया अर्पितो मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कर दो, ठीक है ना, और देह से आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी कि वो भी अपने कर्तव्य का पालन करते रहें और मन और बुद्धि भगवान को अर्पित करें। अगर भक्त लोग भी इन बातों को नहीं समझेंगे और जिस प्रकार भौतिक जगत में लोग केवल अपने इंद्रियों के सुख के लिए सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष कर रहे हैं और भक्त लोग भी कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। संघर्ष इस संसार में उतना होना चाहिए जो कि हम लोग अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेवारियों को निभा सके इसलिए, और बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें अधिक से अधिक प्रॉफिट की तरफ सोचें। जो परम यहां बता रहे हैं कि वह यह भी नहीं समझ पाता कि मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसी देह में परम सत्य का, भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है, इस शरीर से ही किया जा सकता है, वो ये नहीं समझ पाता और उद्देश्य अनजाने ही विनष्ट हुआ जा रहा है, मतलब वो प्राप्त नहीं कर पा रहा और ये शरीर धीरे धीरे विनष्ट हो रहा है। हमारे शरीर में कितने बदलाव आ गए, ये बदलाव देखकर तो हम कह सकते हैं कि हाँ मैं वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा हूं और एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन मन कभी भी हमें ऐसा फील करने में हेल्प नहीं करता है। इसलिए वृद्धा अवस्था तक भी व्यक्ति के विचार हमेशा क्या रहते हैं, जवान रहते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति भी अपने आप को आखिरी तक ये महसूस नहीं करता कि वो क्या है, वृद्ध है, क्योंकि मन क्या है, जवान है। मन के विचारों को कोई विचार कभी बूढ़े नहीं होते, पुराने हो सकते हैं लेकिन दोबारा सोचो तो फिर नए हो गए। इसलिए ऐसे भक्तों के साथ रहना या लोग जो हमें बार बार रियलाइज कराएं, जो हमें इन तथ्यों को भुलाने में हेल्प कर रहे हैं वो माया है, और जो हम लोगों को इन सब सच्चाइयों से अवगत करा रहे हैं, याद करा रहे हैं, वो क्या है, हमारे सुहृद, हमारे मित्र हैं। क्योंकि जैसे ही हम भूलते हैं सत्य को तो तुरंत हम लोग माया में चले जाते हैं। तो इस प्रकार फिर भी वह इतनी चतुरता से एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी दमड़ी खोए ना। जो उसने इतनी खून पसीने की मेहनत से, कमाई से, मतलब जो कमाया है उसमें से चाहता नहीं कि 1% भी लॉस हो उसको, बिल्कुल लॉस नहीं चाहता। तो इसको बोलते हैं मूर्खता, क्योंकि वो चंद, अच्छा पहले तो क्या होता था, अशर्फियां, सोने और ये सब चीज होती थी ना, उसके लिए तो चिंता करना फिर भी ठीक है क्योंकि उसको वैल्यू होती थी। अभी तो कागज और प्लास्टिक के नोट है, उसके लिए चिंता करता व्यक्ति जो कि मतलब कुछ भी नहीं। फिर भी वो कह रहे कि एक दमड़ी भी ना खोए, ऐसी अपनी योजना बनाता है। कई बार हमने देखा होगा कि कंजूस बोलते हैं कई बार किसी लोगों को, किनको बोलते हैं कंजूस, जो जूते खरीद के लाता है लेकिन पैर पे नहीं पहनता क्योंकि घिस जाएंगे मतलब उस व्यक्ति बोलते हैं जिसके पास सब कुछ है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो, है कि नहीं, तो उसे कंजूस बोलते, कृपण कहा गया उसको। तो उसी तरह कृपण किसे कहा गया, कंजूस किसे कहा गया, वो व्यक्ति जिसको ऐसी चीज प्राप्त होगी जिससे वो सब कुछ कर सकता है लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा उस काम के लिए। ऐसा देह प्राप्त हो गया तो उसकी दमड़ी ना खोए बस। अच्छा ऐसा भी है कि कभी कोई व्यक्ति, जैसे किसी ने हमको बोला कि कफन में क्या होती है, जेबें नहीं होती है? क्योंकि सबको पता है कि इसमें कुछ आता नहीं साथ में, और जाने का और आने का तो चुटकी बजा के काम होता है ना सब कुछ। तो जब कुछ जाता नहीं है साथ में, हमने एक बार जगह पूछा कि वैसे लोग इतने बुद्धि, इतने बेवकूफ तो नहीं है कि जिस चीज को सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठा कर रहे हैं वो साथ ना जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार एक भोग विलासी राजा था, इतना मतलब अय्याश था, उन्होंने समाज का ध्यान देने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी एक आदत थी उसकी कि अपने राज्य में अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज को बुला के रखता था। कोई इंजीनियर है तो कोई MBA है, हर तरह का व्यक्ति रखा था। तो एक उसको पागल की भी जरूरत थी, मूर्ख की, यार मेरे को राजा सिपाही को बुलाया कभी, मेरे लिए मूर्ख भी ढूंढ के लाओ जो बेस्ट हो पूरे राज्य में। तो कहते हैं अजीब मूर्ख है, खुद ही बैठ जाओ सीट पे, बोला नहीं पर फिर भी ढूंढने चला गया। कहता है एक तो वो मूर्ख है, मैं मुझे ढूंढ रहा हूं, तो मिला ही नहीं सबसे। जिससे पूछे सर आप मूर्ख हो, कहते मैं क्यों, आप हो गए मूर्ख। कहते अच्छा, तो जिसके पास भी जाए नहीं मिलता। तो अचानक एक पेड़ पर एक व्यक्ति जो है जिस डाली में बैठा था उसी को काट रहा था, तो कहता ये कुछ समझता, मतलब ये कुछ मूर्ख लग रहा है, उसको पकड़ के ले गया। कहा सर ये मेहमान को राज्य में सबसे ज्यादा मूर्ख लगा। कहते क्यों भाई, ऐसे क्या? कहते सर जिस डाली में बैठा था उसी को काट रहा था। कहते अच्छा, तो बैठ जाओ, तो मूर्ख बैठ गया वहां पर, उसके गले में तख्ती भी डाली गई महामूर्ख, और 30-35 हजार उसको डॉलर्स में सैलरी भी मिल रही थी, और वो अजीब अजीब करता बच्चे जी जोक सुनाता था, राजा बड़ा खुश होता था। तो अपना समय ऐसे निकाल रहा था, कभी राजा कहीं यहां युद्ध कर दिया, कभी वहां युद्ध कर दिया, कभी उसका छीन लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक बार राजा बीमार पड़ गया, सुना होगा ना आपने कथा, राजा बीमार पड़ गया और सबको मिलाया, सबसे मिला, तुम भी हो ठीक है, कहते भाई उस मूर्ख को भी एक बार मिला दो, मैं जाऊं उससे पहले एक बार देख लूं उसको भी। तो मूर्ख भी आया, कहते महाराज आप बड़े दिन से राज्य में नहीं आ रहे। कहते भाई मैं तो बीमार हो गया और मैं तो बस जा रहा हूं। कहते कहां जा रहे हो? कहते मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। कहते मैं भी साथ चलूंगा। कहते मैं जहां जा रहा हूं तू मेरे साथ नहीं चल सकता। कहते क्यों? युद्ध में तो ले जाते थे, शिकार में भी लेके जाते थे, कहीं भी ले जाते, साथ ले जाते थे, अब क्यों नहीं ले जा रहे, अकेले अकेले जा रहे हो? कहते हम अकेले जाना पड़ता है। कहते अच्छा, मेरे साथ ही जाना, अपनी वाइफ को साथ ले जाओ। तो कहते नहीं, वाइफ को भी नहीं ले जा सकता। कहते झगड़ा है क्या? तो कहते बच्चों को ले जाओ। कहते अरे मूर्ख मैं बता रहा हूं, जहां मुझे जाना हो मैं किसी को साथ ले जा सकता, ये लंबी यात्रा है। कहते महाराज अच्छा, घर वालों से झगड़ा है तो वजीर को ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कहते मैं किसी को, कहते अच्छा घोड़े रथ तैयार करवा देता हूं, घुड़सवार साथ में हो, कुछ सहना। कहते कुछ नहीं। कहते रास्ते में खाओगे पियोगे क्या? ये एक अशरफे की ये पोटली रख लो साथ में। अरे मैं कुछ नहीं ले जा सकता साथ, तू सच में मूर्ख है, तेरे को मैं सैलरी जो देता हूँ ठीक टाइम सही ले देता हूँ। कहते महाराज अच्छा एक बात बताओ। कहते क्या है? एक प्रश्न तो पूछ लो। कहते हाँ ये पूछ लो। कहते महाराज आपको पता था कि आपको ये यात्रा करनी है एक बार? कहते प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। कहते सच बताइए कि आपको सच में मिला था कि आपको ये यात्रा करनी है? कहते हाँ सबको करनी, मुझे भी करनी। कहते ऐसी यात्रा जिसमें अपनी वाइफ बच्चे अजीर मेरे को किसी को साथ नहीं जा सकते, यहां तक कि अपना धन ले जा सकते? कहते हाँ। कहते आपको पता था? कहते हाँ। कहते महाराज एक बात, अगर आपको पता था तो एक काम, उसने अपने गले से तख्ती निकाली उसके गले में डाल दी। कहता मूर्ख बदतमीजी क्या कर रहे हो? कहते महाराज क्षमा करना, मैं मूर्ख तो हूं लेकिन महामूर्ख आप है। कहते अगर आपको पता था कि आपको एक दिन जाना है, एक ऐसी यात्रा करनी है जिसमें पूरे जीवन भर की कमाई, राजपाट, घोड़सवार, वजीर, पत्नी, बच्चे कोई साथ नहीं जाता, तो भी आप पूरा जीवन वही सब इकट्ठा करते रहे, उन्हीं की चिंता करते रहे, तो महाराज इसलिए मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तो आप है। राजा कहता अरे बड़ी समझदारी की बात कर दी इसने, वो भी एंड में। कहते भाई तूने बहुत अच्छी बात करी, तू ऐसी अच्छी बात कैसे कर सकता है, कौन है तू? वो कहता महाराज मैं कौन हूं? उसने ऐसे टोपी निकाली। कहता महाराज मैं इस कौन से वहां प्रचार करता था, बाद में पता चला हमारे देश का राजा ऐसा है ना, जैसे राजा वैसी प्रजा, तो पूरा का पूरा समाज ही खराब चल रहा है। तो मुझे लगा आपने मूर्ख ढूंढने की कोशिश की, मैं ही बनके चलाया था। कहते बेवकूफ इतने आखिरी में क्यों बता रहा है, अब तो टाइम निकल गया मेरा। कहते महाराज कुछ नहीं निकला, वो मैंने खाने में कुछ ऐसा मिला दिया जिससे आपकी हालत खराब हो गई थी। अभी टाइम है, अभी भी समय है कि आप दोनों हाथों को उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस महामंत्र का जप करो महाराज, महाप्रभु ने दिया है। ये जीवन तो चलता रहेगा, कभी खत्म हो गया था ना, ये जीवन तुम्हारा नहीं है, मेरा है, जैसा मैं बोलूं वैसा करो। प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करो, भक्तों का संग करो, कृष्ण कथा सुनो और हरि नाम लो, और इससे क्या होगा कि आपको बार बार मरना नहीं पड़ेगा, आपको चिंता नहीं रहेगी कि मैंने जो कमाया था, जो इकट्ठा किया था, उसको तो छोड़कर जाना पड़ रहा है। उसी की चिंता से व्यक्ति शरीर त्याग देता है। हमें एक भक्त ने बताया कि आजकल तो अच्छा बोलना भी बड़ा बेकार है। मैं क्यों, क्या हो गया? कहता मेरा एक खुद का मित्र, जब उसके पिता अंतिम समय में थे, बेड पर थे, उनको हॉस्पिटल में देखने गया, उसने कहा पिताजी भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, बोलो। कहते तू तो चाहता ही मैं मर जाऊं और सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाए, और उसके बाद ही मर गया। कई बार लोगों से आखिरी समय में हरिनाम बुलाऊंगा, उसको लगता है तो मेरे को मारने आया है। तो इतना अंधकार है, इतना इतनी इतनी अज्ञानता है लोगों में, हम भूल जाते हैं। और इस भूल के कारण, इस अज्ञानता के कारण ही सारे पाप होते हैं। इस अज्ञानता के कारण ही, क्योंकि लक्ष्य से भटके हुए हैं, इसलिए थोड़ी चोरी करते हैं, बड़ी चोरी करते हैं, है ना, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, बड़ी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और अपने जीवन को इस तरह इसी में लगा रखते हैं। कुछ साथ नहीं जाना। बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति संसार का, जिसे नोबेल पुरस्कार मिल रहा है या भारत रत्न मिल रहा है या अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है या देश उसको मिनिस्टर की पोस्ट पर बिठा रहा है, सब बेवकूफ हैं जिन्हें जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम। एक तो खुद अंधे हैं और अंधों के द्वारा चलायमान है और अंधों का ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार का अंधकार श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व में दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री कृष्ण स्वधाम उपगते, जब अपने धाम में चले गए, धर्म ज्ञान आदि इस सहस धर्म और ज्ञान के साथ वापस चले गए। लेकिन कलो बताते कलयुग में नष्ट दृशा मेश, लोगों की जो नेत्र है वो अंधे हैं, लोग नेत्र नहीं है। पुराण बता रहे कि क्या दिया, पुराण, भागवत पुराण दे दिया अग्नोती, ये टॉर्च लाइट का काम करेगा इस अंधकारमय युग में। श्रीमद् भागवतम अंधकार में टॉर्च मिल जाए किसी को, अपना रास्ता देख सकता है, चल सकता है। उसी प्रकार ये जो ग्रंथ है स्वयं कृष्ण का अवतार, ये इस अंधकारमय जगत में टॉर्च का काम कर, तो जिसके पास ये टॉर्च है, जिसके पास ये ज्ञान है, जिसके पास भक्तों का संग है, वो लोग तो अपने को बचा लें। बाहर के जीवन को देखकर, भौतिक परिवेश को देखकर, प्रभु जी यहां ये हो गया, वहां ये हो गया, अब इसकी सरकार बन गई, अब ऐसा हो गया, हम भूल जाते हैं कि सुप्रीम गवर्नमेंट किसकी है। जिनकी इच्छा से पत्ता नहीं हिलता, विश्वास है कि नहीं, है कि नहीं, तो क्या मजाल कि संसार में कुछ कर ले। ये तो कलयुग है, मतलब कलह का युग। कलह क्या होता है, झगड़ा, लड़ाइयां, डुप्लीसिटी, ये तो बढ़ना है रोज, और रोज बढ़ रहा है। देख आप बताइए ना, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अवतार सिंह जी जब छोटे थे तो ऐसा वातावरण था, सड़कें अच्छी बनी हैं और कुछ अच्छा नहीं हुआ है, छोटे मकान थे, अभी बड़े हो गए हैं और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, काम वही हो रहे हैं असुरों वाले, बस लोगों का चरित्र खत्म हो गया। लोग इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, ये बिल्डिंग्स बन गई डेवलपमेंट है, सड़कें अच्छी बन गई ये डेवलपमेंट है। अबे सड़कों पे खड़े होकर तो जाम में फंसना है, पैदल जाकर जो व्यक्ति पहुंच जाता था अब गाड़ी में रहकर बैठ के जाम में फंसा हुआ है। आहार निद्रा भय मिथुन पहले लोग छोटी सी झोपड़ी में भी कर लेते थे, और अब बड़े महलों में, बिल्डिंगों में कर रहे, अपार्टमेंट में कर रहे। जीवन का स्तर उठाना, ये जीवन का स्तर नहीं है, क्योंकि देश के नेता सोचते हैं ये जीवन का स्तर उठा दिया, हमने इतना प्रगति कर डाली, हमने शहरों को इतना सुंदर डेवलप कर दिया कि किसान खेत बेच बेच के आ रहे हैं। वहां के राजा थे, यहां के लेबर है, क्योंकि यहां तो पैसे जल्दी खर्च हो जाते, इंद्रिय तृप्ति में लगा डाले, अब वो हेल्पर ही कर रहा है, इरिटेट हो रहा है। रूपा जी कहते जिसके पास थोड़ी जमीन और एक गाय है वो राजा है, वो अपना पूरा जीवन अच्छा ढंग से चला सकता है। लेकिन इस भोग विलास की जिंदगी को, इस माया के एक्सपेंशंस को देख देख कर लोग भ्रमित हो रहे हैं और फिर उसमें स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग ये ना बोलें कि ये तो क्या है, गरीब हैं, या ये लोग तो पुराने ख्यालों के, ये लोग तो बड़े सरल हैं। समाज भरा हुआ है इस प्रकार के लोगों से जो बोले। उस दिन हम बता रहे थे किसी को कि अगर आपके ब्लॉक में, आपके एरिया में नोटिस लग जाए कि आज शाम को 6 बजे सब लोग इस 15 माले की बिल्डिंग पर जाकर छलांग लगाएंगे तो कितने लोग लगाएंगे हाथ खड़ा कर? नोटिस लगा हुआ है जी, क्या बात कर रहे हैं? चलो आपको लग रहा कि, और अगर आपको लगे कि अरे ये भी गाड़ी लेके भी जा रहे, आपके पड़ोसन भी जा रहे, आपके रिलेटिव भी जा रहे, फिर तो जाओगे छलांग लगाने? कितने लोग जाएंगे हाथ खड़ा कर? क्या बात कर रहे हैं? अरे आपका दोस्त का फोन है, आप अभी तक घर पे ही हो, अब गए नहीं, निकले नहीं अभी, अचानक बाहर हॉर्न बजते हैं, प्रभु जी आओ लिफ्ट दे दूं, वहीं जा रहा हूं, तब तो जाओगे, फ्री में लिफ्ट भी मिल गई, नहीं जाएंगे? हाथ खड़ा करके तरफ जाएंगे? सब जा रहे, सबने लाइन लगाई हुई है, छत से गिरेंगे 15 फीट की माले से तो गिर के खत्म, ठीक है ना, यही तो डर है ना। लेकिन जिस प्रकार हम अपनी चेतना को, आत्मा को, अपने संस्कारों को खराब कर खत्म कर देहात्म बुद्धि के स्तर पर आके भोग विलास के जीवन को जी रहे हैं, उससे तो हम लोग इस फ्लोर पर नहीं गिरेंगे, अधम योनी, पशुओं की योनी, नरकों में जाना पड़ेगा, यहां से ऐसे कूदेंगे कि वहां गिरेंगे। और सब लगे हुए कि नहीं लगे हुए लाइन में? लाइन में है कि नहीं? अरे बोलते हैं, फोन आते हैं, हाँ जी चल रहे हो इस मॉल में? हाँ आ रही हूं। हाँ जी प्रभु चल रहे हो उधर पैसा लगाने? हाँ जी चलो प्रभु जी, पैसे मैं खर्चूंगा, पियेंगे? हाँ चलो। तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? रिश्तेदार भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हम भी स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा ये भी थोड़ा ये भी। लेकिन उस तरह 15 माले से कूदने के लिए भी जा रहे, लेकिन इस तरह का जीवन जी के अधोगति को प्राप्त करने के लिए जा रहे। तो ये समाज जिसमें ज्ञान नहीं है, जिन्हें जीवन का लक्ष्य नहीं पता, जो अंधकारमय जीवन जी रहे हैं इंद्र भोग का, और बताते हैं, हम जानते हैं ना इंद्रिय भोग का मतलब क्या है, इंद्रियां सर्पों के समान है और इसमें किसी भी इंद्रिय भोग को आप किसी भी इंद्रिय को तृप्त करिए, आप ऐसा नहीं लोग इंद्रिय तृप्त करने से वो तृप्त हो जाती है, नहीं नहीं नहीं, वो डबल फोर्स से दोबारा डिमांड करती है, फिर आप उसको दोबारा भोग कीजिए, फिर और। तो ये इस प्रकार है कि अग्नि जल रही है और इंद्रिय भोग का मतलब है कि आपने उसमें एक चम्मच घी डाल दिया बुझाने के लिए, तो पड़ गई, फिर आपने और लिया और डाला और बढ़ गई। इंद्रिय भोग से संतुष्टि नहीं मिल सकती, कई बार लोग एग्जाम्पल भी देते हैं, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बोला और भगवान कृष्ण ने चूंकि सर्वोपरि हैं, सबसे सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, उन्होंने गीता में बोला भैया इंद्रिय भोग से ये तो अग्नि में घी डालने के समान है। और कई लोग अपनी तर्क और वितर्कों से क्या करते हैं, ऐसे एग्जांपल ढूंढते हैं देने के लिए जिसमें ये लगता हो जैसे प्रभु जी हमने सुना है कि आप 4 रसगुल्ले खाओ तो बड़े मीठे लगते हैं, 6 खाओ तो अच्छे लगते हैं, 10 खाओ तो ना टेस्ट थोड़ा ऐसा आ जाता है, 15 खाओ तो खाने का मन नहीं करता। इंद्रिय भोग से मिल गए ना, निराकार हो गए ना इंद्रिय भोग? लेकिन नहीं, कोई एग्जाम्पल इस भौतिक जगत का, भौतिक एग्जाम्पल आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए पूर्ण नहीं है, और अगर हो भी गया कुछ क्षण के लिए लगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि दोबारा डिमांड नहीं करेगा उसको लेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इस प्रकार बहुत सारी संस्थाएं हैं जो धर्म के नाम पर विधर्म का प्रचार कर रही है, कुछ ना कुछ फिलॉसफी, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी, क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति को ग्राहक तो मिल ही जाते हैं, हर व्यक्ति को तो हर दुकान में भीड़ मिलेगी आपको। लेकिन जो लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षित होंगे, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना सुंदर प्रहलाद महाराज देखिए गृहस्थी जीवन में भी नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा प्रवचन कर रहे हैं हम लोगों को समझाने के लिए कि भैया इस पैसे के चक्कर में मत पड़ो, आध्यात्मिक धन के चक्कर में पड़ो, ये तो यही रह जाएगा, इसमें कुछ ले जा भी नहीं सकते। और देखिए क्योंकि इस लोभ के कारण एक संतुष्टि सोचता व्यक्ति मिलता, बैंक बैलेंस जब बढ़ता है तो संतुष्टि फील करता है, मान सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा, हाँ सब हो गया, मैंने सब कुछ कर दिखाया, बस ऐसा एक फील लेने के लिए व्यक्ति पूरा जीवन अपने लक्ष्य को भुलाकर मेहनत करता है। जबकि भगवान का एक नाम है विश्वंभर, पूरे विश्व का भरण करने वाले, ये उनकी जिम्मेवारी है। और चींटी का भी भरण पोषण कर रहे हैं और हाथी का भी भरण पोषण कर रहे हैं। अरे जब इससे पहले कुछ समय पहले डायनासोर रहते थे वो भी खाते थे कुछ ना कुछ, है कि नहीं, और हमारे लिए नहीं मिलेगा क्या दो चपाती और वो सब नहीं मिलेगा क्या? जितना भोजन करना है, जितने कपड़े पहनने हैं, जितने एरिया में रहना है, उतने तक का प्रबंध हमारा हो रखा है, आपने भी किया हुआ है उतना इजीली, है कि नहीं। लेकिन जो हम लोग अधिक मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि इतना वेट बढ़ जाए, भाई किसी के पास वजन ज्यादा है तो भाग सकता है? हाँ प्रभु जी भाग सकते, हाँ थोड़े भाग सकता है, और वेट डाल दो, और वेट डाल दो, और वेट डाल दो, तो अब उसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग जितने ज्यादा यहां पर उद्यम कर रहे हैं, उग्र कर्म कर रहे हैं, या और संसाधनों को जुटा रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं अपना, तो क्या है, एक किस्म का बोझा है। या तो उस बोझे को आपको मालूम हो कि कैसे कन्वर्ट करना है, किसमें, भक्ति में, मतलब उस बोझे को अगर आप कृष्ण से टच कर दो, कृष्ण को समर्पित कर दो, तो क्या हो गया, वो सारा का सारा स्पिरिचुअल हो गया वो। और अगर उसको भोगने की कोशिश करी तो फिर तो चलना बड़ा मुश्किल है कि नहीं। तो इसलिए भक्तों को अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए डेली बेसिस पर, और देखना चाहिए कि मैंने कितना क्षण जो है कृष्ण का स्मरण किया या साधना में लगाया, और कितना नुकसान किया पूरा दिन में, ठीक है कि नहीं। रोज बैलेंस बनानी चाहिए भक्तों को, आज के श्लोक से तो ये समझ आता है, ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की किसी को प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा तो, हाँ जी प्रभु जी का प्रश्न है कि दोबारा कुछ सबक सुन
जो इंद्रिय तृप्ति को लेके जो हम आपने एग्जांपल दिए कि आदमी अगर प्रोग्रेसिव अप्रोच पे नहीं रहता, जैसे किसी भी लेवल से ऊपर लेवल पे नहीं जाता, कम पैसे वाला ज्यादा पैसे वाले की तरफ जाता है, या कोई भी लेवल है, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब ना हो तो सिविलाइजेशन कैसे मिलेगा?
हाँ, तो मैंने तो ये बोला भी नहीं कि ये सब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, भगवान ने कहा चतुर्वर्णामया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, इस पूरे समाज को मैंने चार वर्गों में वर्णों में बांटा है। तो अपने स्वभाव के कारण व्यक्ति ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये कैटेगरीज बनी हुई है। और स्वभाव के कारण व्यक्ति उसमें लग जाता है काम करने में, तो सिस्टम चल रहा है। फिर हम कह ही नहीं रहे कि सबको बराबर कर दो और प्लेन कर दो और सब यही करें, बस ऐसा नहीं बोला। कहने का मतलब यह है कि जो लोग अत्यधिक उद्यम कर रहे हैं अपनी एनर्जी उन चीजों में लगा रहे हैं जिससे कि व्यक्ति नास्तिकता बढ़ रही है, जिससे कि गॉडलेस सोसाइटी बन रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जितने भी लोग इस समाज में हैं सबका कुछ ना कुछ पुराना बैंक अकाउंट है, तो उन कर्मों के आधार पर जब वो अपना कर्तव्य कर्म करते हैं तो उनको फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं, तो वो अपना भी मिल जाएगा उसको। अपना कर्तव्य करे तो उसी में आ जाएगा जो मिलना है। प्रहलाद महाराज बोलते भी कि ये चीजें तो अपने आप ही आ जाती है, जैसे दुख मांगने से सॉरी दुख भी अपने आप आते हैं तो सुख भी अपने आप आएंगे, तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। हमें तो बस अपने कर्तव्य करना, अपने गुण कर्म विभाक्ष उसके हिसाब से, तो वो चीज अपने आप मिलेंगी। समाज को हम लोग ये नहीं बोल रहे कि बराबर कर दें, हम तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास जो संसाधन है उसे कृष्ण से जोड़ लें, नंबर एक, तो वो सब स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। अन्यथा जो बाहर समाज में लोग कर रहे हैं भगवान को हटाकर समाज को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो समाज ऊपर नहीं उठेगा इससे। सड़क और बिल्डिंगें देखने से समाज थोड़ी बनता, करेक्टर चेतना पर डिपेंड करना चाहिए। क्या करें, प्लीज प्लीज।
उनका इतना पार्शियलिटी क्यों, जैसे अगर हम एज पर स्टैटिस्टिक्स जाएं तो मतलब मोर देन 65% इज मुस्लिम, 30% इज क्रिश्चियन, रेस्ट में हमारी जो कम्युनिटी आती है इट्स लेस देन 0.1%, उसमें से भी जो सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, जिसमें से अगर हम ब्रह्मचारी की भी अगर गणना करें तो वो भी 2,500 होंगे, तो इतनी पार्शियलिटी क्यों भगवान की?
पार्शियलिटी नहीं, भगवान ने कहा है जैसे आप इतना बड़ा स्कूल बनाते हैं 4,000 बच्चे, लेकिन फर्स्ट कितने आते हैं, सेकंड कितनी पोजीशन आती है, 90% कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। और प्रभुपाद जी भी कहते थे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप में आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, और जहाँ डायमंड मिलता है वहाँ इक्का दुक्का ज़्यादा है कि नहीं। तो जिसके पास कैलिबर है, जिसके पास वो योग्यता है, फिर भगवान ने कहा मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये, कि भाई हजारों में कोई एक ही मेरी भक्ति में आता है, इतना आसान नहीं है फिर, है ना। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हम भी चाहते हैं कि भगवान की ये बात कि भाई हजारों में एक आता है, तो हम चाहते हैं प्रचार करें कि प्रभुपाद ने कहा प्रचार करो, महाप्रभु ने आके बोला जा रहे देखो तारे को कृष्ण, हर व्यक्ति को कृष्ण को उपदेश दो, ताकि हर व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करके आगे बढ़ सके। हम लोग फिर से एक्सटर्नल एनवायरमेंट को देखकर ये ना सोचें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये इतनी ज्यादा है ये इतने काम है। तो चैतन्य महाप्रभु चाणक्य पंडित जी कहते हैं हजारों तारों से अच्छा है कि एक चंद्रमा होना चाहिए जिसको प्रकाश करता है, तारों का गुण। उसी तरह 100 पुत्र का कोई फायदा नहीं, अगर एक गुणी पुत्र हो तो ज्यादा काम करने वाला है। तो उसी तरह जो भक्त लोग हैं वो पूरे समाज को दिशा दे सकते हैं और दे भी रहे हैं, और हम प्रचार कर रहे हैं उसका फायदा तो हो गया लोगों को। और हमने जैसे बताया था कि भगवान सुप्रीम सरकार है, सुप्रीम कंट्रोलर है, तो ये कलयुग का मतलब है 5,000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ और अब इसका अंत 4,32,000 पर, तो ये शुरू होगी ना फॉर्डन, तभी तो सत्युग आएगा, अगली लीला शुरू होनी है। तो हम लोग जो हैं आए यहाँ पर युग गिरने के लिए, तो कलयुग का फॉर्डन इस तरह हो रहा है धर्म का इस युग में, जो बच्चा बच्चा धर्म है। तो अभी हम लोग शुरुआती हुई है, लेकिन इस शुरुआत में 10,000 साल का समय ऐसा है जहां पर ये ऐसे ना होकर ये थोड़ा सा ऐसे रुक जाए, फिर यूं आएगा। युग गिर रहा था तो ये 10,000 साल समझ लो यूं हो गया, थोड़ी देर स्वर्णिम युग आ जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से प्रचार बढ़ेगा, हरि नाम बहुत फैलेगा, तो कुछ समय के लिए कलयुग में रोक लग जाएगी कसम से, मतलब हरि नाम लेने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे, है ना, अपने को उद्धार करने वाले, तो समझ लो इस तरह रुक गया। और उसके बाद फिर कलयुग के प्रभाव से, क्योंकि खत्म करना है ड्यूटी है कलयुग की भी खत्म करूं, ताकि फिर अगला युग हो, उसकी भी सेवा है ना, जैसे वाइंड अप वालों की सेवा होती है प्रसाद के बाद सब झाड़ू पोछा करके सब बाहर, सेवा है उनकी, तो उसी तरह कलयुग की भी सेवा है कि सब कुछ ताकि सत्य के लिए एनवायरमेंट बनाया जा सके। और इसमें जो 10,000 सालों के बीच में जो चैतन्य महाप्रभु के जन्म से शुरू हुआ है, उसमें जो लोग हरिनाम श्रीमद भागवतम का ज्ञान और हरिनाम लेकर जो लोग अपने को बचा सकते हैं बचाएं, और आध्यात्मिक जगत में वापस आए। एक अपॉर्चुनिटी लॉटरी लग गई सर, ठीक है।
हरे कृष्णा, हमारा जो मन है और हमारी जो बुद्धि है, तो जो आपने बताया कि हमेशा कृष्ण में होनी चाहिए, भगवान में हमारे को लगाना चाहिए, तो जब हम बिजनेस करते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमारी मन और बुद्धि भगवान में लगे? क्योंकि हम जब अपना बिजनेस में अपना मन और बुद्धि नहीं लगाएंगे तो हम बिना मन और बुद्धि के कैसे बिजनेस कर पाएंगे?
बिल्कुल सही बात है। जब अर्जुन युद्ध कर रहा था तो उस समय पीछे नहीं देख रहा था भगवान कैसे, क्योंकि भगवान ने कहा था मन मुझ में लगाओ, तो ऐसे नहीं लग रहा। क्या कर रहा था वो? सामने शत्रु को देख रहा था और पूरे उत्साह से युद्ध कर रहा था। उसी तरह अगर हम अपने बिजनेस में हैं और अपने कार्य क्षेत्र में है, महिला गृहिणी जो है उन्हें पूरे उत्साह से उसी तरह कर्म करना चाहिए जैसे कि कर्म है, जो कि उनको उनका ड्यूटी है। लेकिन बुद्धि का मतलब यहां पर हुआ कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि मुझे इन कर्मों से आसक्त नहीं होना, क्योंकि भगवान का संदेश ज्ञान है ना। तो ज्ञान से आसक्त है मतलब बुद्धि समर्पित की हुई हमने भगवान के ज्ञान में, तो मैं कर्म से आसक्त ना हूं, कर्म के फलों से आसक्त ना हूं। क्योंकि हम लोग अभी जो बिजनेस करते हैं तो उसमें आसक्त हो जाता है, उसके वजह से दुखी परेशान होते हैं, अर्जुन जैसे रो रहा था फिर वैसे होते हैं। लेकिन भगवान ने जब ज्ञान दिया उसको समझ आ गया कि भगवान ने सबको डिसाइड कर दिया है, अपने को तो क्या करना है, युद्ध करना है और अटैच नहीं होना, ठीक है ना। तो हमें भी अपने घर के कार्यों को या बिजनेस के कार्यों को पूरे उत्साह से करना चाहिए, नुकसान उसमें भी नहीं होना चाहिए, पूरे उत्साह से करें। लेकिन उत्साह के साथ साथ हमें याद रहना चाहिए कि ज्ञान क्या कहता है। ज्ञान कहता है कि आपको इन सब क्रियाओं को करने के बाद भी इन कार्यों से आसक्त नहीं होना, तो इसको कहते हैं ज्ञान। और मन, मन पर भगवान हो गए, तो मन को जो है वो भी हम लोग भगवान के गुणगान में नाम में लगाएं। लेकिन बिजनेस के समय तो मन उसमें लगेगा, प्रॉफिट आएगा, ये होगा, तो फिर मन अगर उसको उस तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वो आसक्ति का कारण बनेगा, इसलिए उसे भी भगवान के उसमें लगाना चाहिए, नाम में। तो मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाने का मतलब है कि अपने कार्य को करते रहिए लेकिन हमें उसका प्रॉफिट का क्या इस्तेमाल करना है, कर्म कैसे करना है, और लोग जो मेरे को मिलेंगे उनके साथ कैसे डील करना है, तो तब ज्ञान का सही एप्लीकेशन करना चाहिए। जैसे सरकारी ऑफिसर होता ना, तो वो बैंक में होता है, करोड़ों रुपया रोज जमा कराता है और करोड़ों निकालता भी है, अनासक्त भाव से करता है। उसको मालूम मेरे को मिलनी 25,000 चल रही है ना, इसमें कुछ मेरे को मिलना ही नहीं तो वो करता ही ऐसे है, मुझे ठीक है जी, लाओ गिन के लाओ जी, है ना, पेन हटाओ, है ना, ये हटाओ, नोट फाली हटाओ, लाइन में आओ, करता है। उसको किसी आसक्ति नहीं, ठीक है जमा कराया था डाला, हाँ जी लेना है, लाइन में आओ, सिक्का लाए हो जी देखा ये लो, कोई अटैचमेंट नहीं उसको। उसी तरह हमको भी बिजनेस करना चाहिए तो विदाउट अटैचमेंट, ठीक है जी क्या हुआ, अच्छा आज इतना भी ठीक है ले जाओ, अच्छा इतना माल बना दिया इसका चला गया, ठीक है ना करा। और जितना जैसे जैसे जो आ रहा घर के इस्तेमाल के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो हम लोग करते हैं, और बाकी भगवान की सेवा में लगाओ। मुझे
मुझे ये सब बताया था, ये जैसे कि जो कि रसगुल्ले वाला जो एग्जांपल बताया था कि जैसे कि रसगुल्ले वाला की 10-15 के बाद, तो जी इसमें जैसे कि भागवतम से बहुत सारे जैसे कि केस स्टडी सीखते हैं, अवंती ब्राह्मण हो गए या अति महाराज हो गए, इन्होंने भी इतना भोग करा, उसके बाद एकदम से रेनाउंसिएशन है, बिल्ल मंगल ठाकुर, तो मतलब कैसे, मतलब कि ये जो इसका कैसे समझे कि दक्ष ने भी यही काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया था नारद मुनि को कि तुमने इनको पहले ब्रह्मचारी बना दिया, पहले इनको पहले अच्छे से कर लेते, भोग वगैरह कर लेते, फिर जो है इनकी रेनाउंसिएशन में दम हुआ, तो इसका मतलब कैसे समझे, मतलब क्या आप मतलब क्या कैसे समझे?
भागवतम की तो हर कथा में कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए ज्ञान है, तो भक्तों के मुख से सुनने से हमें पता चलेगा कि उस कथा का मर्म क्या है। दक्ष प्रजापति ने 10,000 संतान की, जी भागवतम में लिखा 10,000 करनी चाहिए, है ना, तो ऐसे नहीं। उनको समय इंस्ट्रक्शन थी, प्रजापति बनाया था, उनको कर लेते, बढ़ाना था संसार के अंदर, ठीक है। लेकिन नारद मुनि जी का बस भी जिम्मेवारी है कि मेरे को सबको भक्ति में लगाना है, तो वो अपनी सेवा करते, अपनी सेवा करते, तो सेवा में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी हुआ आपस में, तो उनको चुप कराया गया, थोड़ा और कर लो, उनको भी बना दिया, फिर श्राप दिया, हर चीज उसमें तो श्राप दे के उनको, ताकि अगर नारद मुनि जी फिर ऐसा श्राप मिला था कि वो प्रचार ही करते रहे, क्योंकि मालूम था कि संख्या बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आज पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो हर किसी को आता है पॉपुलेशन बढ़ाने, लेकिन उस पॉपुलेशन से भक्त बनाना ही बहुत मुश्किल है। तो नारद जी को ऐसे श्राप दिलवा दिया ताकि वो एक जगह रुक के प्रचार ना करें, क्योंकि हर कोई यहाँ तो आएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, इनको ऐसा श्राप देना पड़ेगा ताकि हर जगह घूम घूम प्रचार करें ताकि हर जगह फायदा हो। उसी तरह हम लोग एक मंदिर बना के थोड़ी बैठे हैं ताकि लोग यहीं आए और यहीं से बच्चे, नहीं, इतने मंदिर खोल दिए ताकि हर व्यक्ति तक कृष्ण भक्ति पहुंचे। उस संसार कथा के पीछे कुछ ना कुछ वो है। जयाती महाराज का बताया भोग किया, लेकिन फिर ज्ञान हुआ तो एकदम उन्होंने कर कर दिखाया ताकि किसी को ये ना लगे कि अगर मैं यार 70 साल का हो गया, मेरे को तो अब मालूम पड़ा ज्ञान, मैंने तो बहुत भोग कर लिया, मतलब मैं तो भक्ति कर ही नहीं सकता, प्रहलाद महाराज तो मेरी उम्र ही निकल गई। तो ऐसे एग्जाम्पल उन लोगों के लिए कि जिनको लग रहा है कि तो खत्म कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो एक जयाति महाराज ने कर लिया, इतना भोग करने के बाद वो भक्त बन सकते, मैं नहीं बन सकता, कृष्ण बड़े महान है, मैं गलत हूँ, तो फिर वो मेहनत करेगा।
क्या इन सबको जो मतलब की रिलेशनशिप जो आया है कृष्ण भगवान की कृपा थी, साधु कृपा थी, या फिर क्योंकि फिर अगर इतना भोग किया तो भोग करने की टेंडेंसी और बढ़नी चाहिए थी, तो फिर जो है फिर एकाएक एकदम से ऐसे लटाव से मतलब
भौतिक प्रकृति से ऊपर आध्यात्मिक प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति के अंतर्गत ही भौतिक प्रकृति चलती है। इंद्र तृप्ति एक भौतिक चीज है, लेकिन इससे ऊपर इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, और आत्मा से ऊपर कृष्ण है। तो ये हमें हायरार्की मालूम होना चाहिए। तो जब हमें लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा आसक्त हो गए किसी इंद्र तृप्ति से, या कोई व्यक्ति आसक्त बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि एंड हो गया। जब वो सही माध्यम का चुनाव करेगा या ऊपर से कृपा प्राप्त होगी तो उसको छुटकारा मिल सकता है, उससे इमीडिएटली मिल जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक चीज को भौतिक चीज काट नहीं सकती, ठीक है कि नहीं। तो जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो कुछ भी हो सकता है, पंगु लंग यते गिरी, है ना, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को भाग कर जो है क्रॉस कर सकते, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रमाण।